ज्ञाते मित्रं पदसंबोधे आदं ज्ञायते नमः नमो भक्ते विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपान्वयते गौरादिभावभूमेश्वरनिर्दिष्टासज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौमाश्री जगन्नाथाय ते नमः
अध्याय का 12 श्लोक हो गया।
नाइन्थ चैप्टर में भगवान ने अनन्य भक्ति के बारे में बताते हुए कि वाई अगेन इन 12 चैप्टर्स है एंड अगेन इन 6 चैप्टर्स इन द योगी नाम ऑफ सर्वेशन, तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन
दीस? ए बीच वाले जो 6 अध्याय हैं वो सब शुद्ध भक्ति को उल्लेखन करने वाले अध्याय हैं। तो ये छठे अध्याय का जो आखिरी श्लोक है वो कनेक्शन है पहले के 6 अध्यायों के और बीच वाले 6 अध्यायों के बीच में कनेक्शन।
लेकिन जब नाइन्थ चैप्टर में जब अनन्य भक्ति कंप्लीट एक्सप्रेस करने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण,
इसलिए क्योंकि जब अर्जुन ने पूछा 10वें अध्याय में केशु केशु च भावेशु, तो भगवान को अपनी विभूतियों को वर्णन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि आपका भक्ति जरूर करूंगा मैं, लेकिन मान लीजिए जब मैं एक भौतिक जगत की वस्तुओं को जब देखता हूं तब आपका स्मरण कैसे रहेगा मनमना भवा? तो इसके लिए भगवान ने कहा कि इन भौतिक जगत को जब देखोगे ये समझना कि मेरी शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, इनको देखते हुए भी मेरा स्मरण बना के रख सकते हो। 12th चैप्टर जो है वो सार है जिसके अंदर मुख्यतः अनन्य भक्तों का गुणों का वर्णन है। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अर्जुन का प्रश्न है, ठीक है आपने कहा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, अनन्य भक्त जो सर्वश्रेष्ठ है अन्य योगी विदों से, तो मैं उन भक्तों का लक्षण को जानना चाहता हूं। भक्तों का लक्षण क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी? तो ये क्वालिटीज पहले उन्होंने इतना स्पष्ट रूप में वर्णन नहीं किया था। अभी 12वां अध्याय का 13वां श्लोक से लेके 19वां श्लोक तक भगवान अर्जुन को भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं, द क्वालिटीज ऑफ डिवोटी।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारः
समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैया पिता मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। भक्तों के अनेक गुणों में सबसे प्रथम और मुख्य गुण क्या है? अद्वेष्टा। अद्वेष्टा आप सबको थोड़ा सा समय देते हैं, 10 मिनट। आप इन गुणों को पढ़िए, पहला ये दो श्लोकों के गुणों को पढ़ के आप सबको मालूम है गुण क्या है, लेकिन ये एक गुण और दूसरे गुण के बीच में एक कनेक्शन वो पता कीजिए, और एक कनेक्शन के बारे में सबको कुछ ना कुछ बोलना है, एटलीस्ट 5-6 लोगों को तो बोलना ही है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसका कनेक्शन मैत्रहा करुणा इसके साथ क्या है, निर्ममो निरहंकारहा ये गुण के साथ, निर्ममो निरहंकारहा समदुःख सुख क्षमी, इन सब गुणों का क्या कनेक्शन है एक बार आप थोड़ा सा कनेक्शन जानने से थोड़ा सा और गुणों के बारे में और गहरा ज्ञान होता है। अर्थ है और साथ साथ में इन गुणों के बीच में कनेक्शन भी है। आप तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़ के अपने रियलाइजेशन के अनुसार, ये अनुभूति के अनुसार ये कनेक्शन क्या है इन सब के बीच में, ये जरा उल्लेखन करने के लिए प्रयास कीजिए। कोरिलेट द कनेक्शंस। हो गया। हाँ कुछ शुरू कीजिए।
इसमें जैसे अभ्रष्टा से भूतानम मैत्रेय करना है, तो अभ्रष्टा का मतलब है ईर्ष्या।
हाँ,
तो जिसके मन में ईर्ष्या नहीं होगी वही दूसरे के प्रति मैत्री भाव रख सकता है। इसमें जो संबंध आपने बताया कि ईर्ष्या नहीं होने पर ही मैत्री भाव,
ईर्ष्या नहीं होने पर मैत्री भाव रह सकता है। वेरी गुड।
इसमें और मैं और मेरा की भावना नहीं होगी, मैं और मेरा कि मेरा है या जिसमें अपने मैं मेरा की भावना नहीं होगी वही या स्वामी प्रदर्शन करने की इच्छा नहीं होगी वही अहंकार से रहित हो पाएगा।
वही अहंकार से रहित हो पाएगा, मैं और मेरा भावना नहीं रहेगा वही अहंकार से रहित हो पाएगा। ठीक है,
ये दुख और सुख में सम रहेगा, इसको भी लगे जो ये विचार करेगा कि ये जो दुख हमको मिला है ये हमारे पिछले कर्म की वजह से कोई मिला है और भगवान ने हमको ये बहुत कम करके दिया है, कोई ऐसा हो सकता है हमको इससे ज्यादा मिलता और सम रहेगा। और सुखी में तो वो उसको ये नहीं महसूस करना चाहिए कि ये कोई मेरे किसी कर्म की वजह से हमको सुख मिल रहा है, ये भगवान के पास मिलता है, तो सम रहेगा तो उसको
कम से कम विचार करना शुरू किया आपने कि कनेक्शन है करके, थोड़ा उसको और गहराई में आपको खोज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई somebody else?
ये सुख और दुख के बारे में जब कृष्ण
शुरुआत से आप जो भी पढ़ा है उसको जैसे मैंने प्रस्तुत किया आप अपना बताइए। ये कनेक्शन अनेकों प्रकार हो सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको जिस प्रकार लगा वो कनेक्शन बताते जाइए। ये इसलिए है क्योंकि ये जो गुण है भक्तों का गुण है, हम भक्ति में कितना आगे बढ़े हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा, ये गुणों के द्वारा मालूम पड़ता है, बिकॉज इज क्वालिटीज। तो ये क्वालिटीज वैसे भक्ति करने से आ जाता है, जैसे ऐसी आस्ती भक्तिर भगवती किंचना सर्वैर गुणेश तथा समासते सुरा। हाँ, सारे इतने भी दैवी गुण हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करने से आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुणों को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए बताइए,
हमारा भौतिक जगत में आने का कारण ही ईर्ष्या है।
वेरी गुड, भौतिक जगत में आने का कारण ही ईर्ष्या है।
तो अगर हम ईर्ष्या रहित रहेंगे, जैसे हम हर व्यक्ति से अगर ईर्ष्या करेंगे तो मतलब हम भगवान से ईर्ष्या करते, और भगवान से ईर्ष्या करने के कारण
जीवों के प्रति ईर्ष्या मतलब भगवान के प्रति ईर्ष्या है,
क्योंकि ये भगवान की मर्जी है कि अगर किसी को नेम चेंज सपोज देना है, प्रतिमान प्रतिष्ठा देना है, तो ये भगवान की इच्छा है कि
अरे दूसरों की जो सुख है प्रतिष्ठा वगैरह है जो भी मिलता है वो अपने कर्मों के हिसाब से भगवान दे रहे हैं। तो अगर हम उनके प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, अस्तित्व में किसके प्रति कर रहे हैं,
भगवान
के प्रति कर रहे हैं। वेरी गुड।
हाँ,
फिर वापस
उसी चक्कर में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत जाए, अगर हम ईर्ष्या रहित रहेंगे तो हम ना ही उन भक्तों के लिए प्रिय,
मैंने कनेक्शन मांग रहा हूँ इधर, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एव च, कनेक्शन। हाँ,
अगर हम ईर्ष्या रहित रहेंगे तो हम सभी के साथ मैत्री भाव रखेंगे, क्योंकि हम यही देखेंगे कि हर एक जो भगवान का अंश है तो हम देखेंगे
ईर्ष्या ईर्ष्या भाव ईर्ष्या से रहित रहेंगे तभी सबके साथ मैत्री की भावना रहेगी।
हाँ, और इसमें ये भी है कि जैसे फॉल्स ईगो को, फॉल्स ईगो क्या होते हैं हिंदी में, अहंकार। तो जैसे अगर ईर्ष्या होगी तो अहंकार भी रहेगा, और अहंकार रहेगा तो आपका, मैं और मेरे में
तो, रहेंगे। तो आपका कनेक्शन ऐसा है कि ईर्ष्या से मैत्री ईर्ष्या नहीं रहेगा तो मैत्री भावना रहेगी।
हाँ,
और ईर्ष्या अगर है तो अहंकार आएगा। सारे जितने भी जो अवगुण है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इनका कहना ऐसा है। वेरी गुड। नहीं,
अहंकार रहेगा तो हमेशा मैं और मेरे में अटके रहेंगे कि ये मेरा है, ये मैं।
अल्टीमेटली आपका सार रूप में कहना है कि सब कुछ ईर्ष्या से शुरू होता है। आपका मित्रता की भावना
रहेगी।
वेरी गुड।
इसका कारण हमें द्वेष उत्पन्न होता है, तो ईर्ष्या मैं करना चाहती हूँ कि हमारा अपना नहीं होता है, जो अपना होता है उसके प्रति इनको करना होती है, परेशानियों में हम सहभागी होते हैं, करना होगी। अच्छा फिर अगर हमारे करना रहेगी तो मैं और मेरा की भावना भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमारा सभी को समाज समझे तो अपना हम कुछ नहीं समझेंगे, सबको सबका समझेंगे,
जब
अपनी ये मैं मेरा की भावना नहीं होने से हमें अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार तभी आता है ये मेरा है, मतलब मैं इस पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ, ये मेरा कभी हमारे पास अहंकार आता है।
वेरी गुड।
जब ये नहीं होगा तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आने से भी जब कोई भी कुछ भी होगा तब तो हम समझेंगे कि भगवान की कृपा है, हमें मतलब हमारे वो है, इसी कारण कोई दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है।
अहंकार नहीं होगा तो ये जो सम दुख का सुख आत्मसंहिता नहीं रहने के कारण दूसरे से द्वेष करेंगे, तो एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी।
हम चाहते हैं कि भोग करें,
हाँ मैं भोग करूँ,
हमारी इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो रही है,
हाँ। वेरी गुड, ठीक है, हमारे अंदर एक भोग की प्रवृत्ति है और जो भोग में सहयोग देता है हमको वो मेरा मित्र है, और जो भोग में सहयोग नहीं देता है या उसका रुकावट बाधा बनता है तो वो उससे व्यक्ति द्वेष करने लग जाते हैं,
इस कारण उसके प्रति जो हमारा व्यवहार है क्रूरता का हो जाएगा, दया
हमारी दया नष्ट हो जाएगी। ठीक है ठीक है, नहीं हो इट इज योर स्टार्टेड, ठीक है, और आप कुछ बताइए वो भी
करता है, इसलिए ड्रेस करता है कि वो अपने आप को स्वामी मानता है,
अपने आप को
स्वामी मानता है।
वेरी गुड।
और यही स्वामी मानने के कारण जब वो इस स्वामित्व की भावना से मुक्त हो जाता है तो वह हर चीज को सहन कर सकता है,
हर चीज को सहन करता है, क्योंकि मैं स्वामी नहीं हूं तो मैं तो सर्वेंट हूं, मैं तो नौकर हूं, तो जो भी हो रहा है तो मुझे सहन करना पड़ेगा,
इस तरह से वो स्वाभाविक तरह से आत्मसहन बन जाता है,
स्वाभाविक तरीके से सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। वेरी गुड।
और इस तरह से उसकी बुद्धि और मन जो है जब संयमित हो जाता है अपने आप में तो उसकी बुद्धि और मन भगवान की सेवा में,
आत्मसंयमित हो गया मतलब भी तो सेल्फ कंट्रोल हो गया तो ठीक है। वेरी गुड।
मुख्य उद्देश्य स्वामित्व की भावना से शुरू होता है,
स्वामित्व की भावना से जो त्याग करना, भी अहंकार को त्याग करना। वेरी गुड। और नेक्स्ट कोई और आप कुछ बताइए। ठीक है, ये कनेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो गुणों के बीच में जो संबंध है ये अनेकों प्रकार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैन बी एक्सप्लेन इन मेनी वेज, लेकिन सबसे पहला इधर अद्वेष्टा ये शब्द का महत्व क्या है वो जानना जरूरी है। अद्वेष्टा या द्वेष या ईर्ष्या, इसका संस्कृत में मूल रूप नाम है मत्सरता, जैसे मत्सरता मात्सर्य, ये पहला क्यों है, वाई इज इट इन द बिगिनिंग, ये जानने के लिए आपको मत्सरता का डेफिनेशन जानना होगा, इसका परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वियसनेस, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं, श्रीधर स्वामी का
तो मेरा हो गया।
नहीं
नहीं
नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पर उत्कर्षणम असहनम, पर उत्कर्षणम, पर उत्कर्षणम असहनम, असहनम पर उत्कर्षणम उत्कर्षणम असहनम दूसरों की
दूसरों के उत्तर को सहन
दूसरे का जो सुख है
उसको सहन नहीं कर
सहन नहीं करता इसको क्या बोला जाता है अक्षरता है द्वेष भाव
मतलब दूसरों की जो प्रगति है उसको सहन नहीं करवाना यही
वही दूसरों की सुख है प्रगति है उसको देख के सहन नहीं करता हाँ प्रभुपाद जी लेक्चर से बताते लेकिन ये जो शब्द है वो श्रीधर स्वामी का कमेंट किसने श्रीमद भागवतम में पहले ही इस बात को कहा गया है वही व्यक्ति भागवत को समझ सकता है जो निर्मत्सर है निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिविधम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते कुमार परेश्वर सद्यो प्रीति अवरुद्धते तत्र कृति शुश्रूषु तत्क्षणा ये श्लोक में ही पहले में क्या कहा गया है निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम ये भागवतम कौन समझ सकता है
निर्मत्सर
जो निर्मत्सर है तो दूसरों की प्रगति देख के सहन नहीं कर पाना उसको मत्सरता बोला जाता है तो अद्वेष्टा या निर्मत्सरता का मतलब क्या है
मतलब दूसरों की प्रगति से हम खुश
हों हम खुश हो जाएं
या नॉर्मल रहे
नॉर्मल रहे लेकिन इधर जो अद्वेष्टा का परिभाषा प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य भी करते हैं क्या है मान लो कि दूसरा व्यक्ति आपको देख के द्वेष कर रहा है तभी भी उनको व्यक्ति द्वेष नहीं कर रहा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इधर हाँ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं हाँ फॉर दोज और एक्चुअली नॉट एबल टू फॉलो द प्रिंसिपल्स A pure devotee is never disturbed in any circumstances, nor is envious an enemy, nor does a devotee become enemy or enemy. अपने शत्रु यानी जो व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरा आपसे द्वेष कर रहा है उसके प्रति भी द्वेषित नहीं होना दूसरों की प्रगति देख के द्वेषित ना होना तो ठीक है लेकिन आपकी प्रगति को देख के कोई व्यक्ति द्वेष करता है आपसे उससे भी द्वेष नहीं करना ये बहुत एक आलोचना रहता है टिट फॉर टैट उसने मुझे ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा वो ऐसा खेलता है मेरे से मैं भी ऐसा करूंगा मिचुलिस्टिक थिंकिंग डिवोटी नेवर थिंक्स लाइक दिस मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे द्वेष करता है तब उससे द्वेष नहीं करने के लिए आपके अंदर क्या विचार रखना होगा
कंपैशन
वेरी गुड क्या रखना होगा
दया
रखना होगा वन हैज टू हैव दया सब्स्टिट्यूट The tendency to become envious with compassion. इसको हिंदी में क्या बताएंगे सब्स्टिट्यूट को
दूसरा रास्ता यही है दूसरा तरीका यही कि हम उसके प्रति दया रखें
हाँ दया रखें क्यों कैसे दया आएगी आपके प्रति जब द्वेष कर रहा है दूसरा व्यक्ति इसका मतलब आपके मन में आना चाहिए ये व्यक्ति जो है मेरे प्रति अपराध कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है उसका पतन हो रहा है मैं वो पतन होने से उनको मैं कैसे बचाऊं दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च जब एक करुणा की भावना रहता है जो व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है वो भावना कैसे उत्पन्न होगी जब ये बात जानते हो वो जो है इतना अपराध कर रहा है जिसकी वजह से उसका पतन हो रहा है और मैं उनको पतन होने से कैसे बचाऊं तब वो व्यक्ति को अगर मैं जाके गुरु के जैसे आज्ञा दूं, क्या वो सुनेगा? तो उनके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? मित्र बनना होगा, तभी मैं उसके ऊपर करुणा दिखा सकता हूं। गुरु बन के करुणा नहीं दिखा सकता हूं मैं अभी, क्यों? ऑलरेडी मेरे से द्वेष कर रहा है, उसके ऊपर मैं जाके उपदेश देने लग जाऊं उनको, नहीं हो पाएगा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है श्रीपाद, बहुत सारे उदाहरण है, अनेकों भक्त जिस प्रकार ईर्ष्या दिखाए, लेकिन फिर भी करुणा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो जगह में दायक है। नित्यानंद प्रभु के ऊपर इतना किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या दिखाया उनके प्रति? करुणा की भावना दिखाई। लेकिन एक परफेक्ट आचार्य के रूप में अपनी स्वयं उदाहरण के द्वारा शिक्षा देते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में पूरा मठाधीश थे और हजारों लाखों संपत्ति, लाखों सोने सोना का हो, जमीन का हो, संपत्ति का पूरा मठाधीश। श्रीरंगम मंदिर बताओ, वो टाइम में समझ लीजिए क्या क्या मंदिर है, बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड बोलते हैं, और अनेकों संपत्ति, ऐश्वर्य से, वैभव से भगवान का पूजा होता है। लेकिन फिर भी वो सन्यासी होने के नाते सन्यास धर्म को उन्होंने कभी त्याग नहीं किया। सन्यास का धर्म, सन्यासी का धर्म होता है रोज भिक्षा मांगना, मस्ट गो बैक एवरी डे, रोज भिक्षा मांगना। तो मठाधीश होने पर भी रोज रामानुजाचार्य भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और उनके प्रवचन इतने अच्छे लगते थे लोगों को कि उधर के सारे जितने भी श्रीरंगवासी है सब लोग रामानुजाचार्य प्रवचन सुनने के लिए रोज शाम को आके बैठ जाते। उधर का एक हेड पुजारी था, उनको बहुत ईर्ष्या हुआ रामानुजाचार्य से, ये नया नया आया है अभी, वो भी इधर का नहीं है, श्रीरंगम का नहीं है, कांचीपुरम का है, हम तो इधर श्रीरंगम में जन्म लिए हैं और हम श्रेष्ठ वैष्णव माने जाते हैं और यमुनाचार्य के सानिध्य को प्राप्त किए। तो यमुनाचार्य का मृत्यु के समय आके दर्शन करके, मृत्यु होने के बाद उनका दर्शन किया, इनका क्या स्थिति है? ठीक है, मठाधीश के रूप में उनको घोषणा किया गया है, मैं तो हेड पुजारी हूं इधर का, तो सभी लोग मेरा बात सुनना चाहिए, उनके पास क्यों जाते हैं? ऐसे उनके अंदर बहुत ईर्ष्या आया। जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आता है तो उसको इतना गिरा देता, इतना गिरा देता, सोच भी नहीं सकते हो। इतना हद तक दूसरे व्यक्ति को मारने का भी संकल्प लेता है। तो ये हेड पुजारी ने क्या किया? रामानुजाचार्य को मारने के लिए। तो उन्हें क्या किया? ठीक है, रामानुजाचार्य जाके कहा, आप कल आइए मेरे घर में भिक्षा लीजिए। रामानुजाचार्य, हाँ पुजारी ने मेरे घर में भिक्षा लीजिए। अपनी पत्नी को कहा कि अभी कल रामानुजाचार्य आएंगे, उनके लिए अच्छी तरह से पकवान बनाना, बना के उसके अंदर भयानक जहर में दे रहा हूं, उसको मिला के उनको दे देना। तो पत्नी तो पतिव्रता है, उनकी आज्ञा को स्वीकार करते अच्छा सा पकवान बनाई, बना के वो रामानुजाचार्य तो उन्हें निमंत्रण दिया, वो पुजारी पूजा करने के लिए चले गए। रामानुजाचार्य पहुंचे उनके घर में, उनकी पत्नी जो है पूरा सब बना के जहर मिला के उनको रामानुजाचार्य को दिया। देखे उनकी पत्नी ने कहा, मैं अपने पति की आज्ञा पालन कर रही हूं, मैं पतिव्रता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी पति ने मुझे कहा कि आपको अच्छी तरह से स्वागत करके, सत्कार करके सब देना चाहिए और साथ साथ में जहर मिलाना है, इसके अंदर जहर है, आप संभाल के रखिए। क्योंकि उनकी पति ने ये ना ही कहा था उनको कि आप बोलना नहीं, उन्हें बोल दिया नहीं क्या, वो करके चले गए। अच्छा, एकदम घबरा गए और विचार करने लगे, क्या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पति, मुझे मेरे पति इतना द्वेष क्यों करता है? वो जो भिक्षा तो लेके गए और एक पेड़ के नीचे बैठे और बाजू में रखे थे, कुत्ता भी खा लिया, खाते वो मर गए, जस्ट खाते तो एक मॉर्सल लेते एकदम भयानक से। और जैसे मालूम पड़ा कि पुजारी को उनकी पत्नी ने इस प्रकार का कह दिया, तो रामानुजाचार्य खाए नहीं, तो उन्होंने सोचा ऐसा कौन सा चीज है जो रामानुजाचार्य उनको स्वीकार करना ही है, वो मना नहीं कर सकते। क्या है वो? चरणामृत। अगला दिन सुबह हेड पूजा रहते हैं, चरणामृत में जहर मिला दिए थे और रंगनाथ जी के सामने ब्राह्मणाचार्य को मालूम है इसके अंदर जहर, और उधर चरणामृत बांट रहे, चरणामृत हाथ में है। तब रामानुजाचार्य दो चीज करते हैं, उनको मालूम इतना द्वेष कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक हे भगवान इनका जो मेरे प्रति अपराध है उसको जरा माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे इतना दया आ रहा है उनके ऊपर, एक। दूसरा वो भगवान से प्रार्थना करके सोचते हैं, कहते हैं हे भगवान मेरे अंदर क्या दोष है जिसके वजह से वो व्यक्ति मुझसे इतना ईर्ष्या कर रहा है, मेरे अंदर क्या दोष है जिसकी वजह से वो व्यक्ति मुझसे इतना। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है श्रीपाद रामानुजाचार्य का, सद्वेष्टा मतलब ये है स्टैंडर्ड्स फॉर प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों सभी शुद्ध भक्त के मार्ग में है, ये द्वेष नहीं करने का ये जो स्टैंडर्ड ये है, जो ये स्टैंडर्ड को पालन नहीं कर पाता है, शुद्ध प्रेम भक्ति अत्यंत दुर्लभ हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। वो कितना भी साधना करते रहे वे उधर ही लटके रह जाएंगे, द मेजर स्टेप है, परफेक्ट स्टेप। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ सस्पेंस में छोड़ने के लिए, ऑनेस्टी वेरी विद सस्पेंस आई एम नॉट फॉर दैट। तब रामानुजाचार्य वो प्रार्थना करते हुए उनको माफ कर दीजिए, प्रार्थना करते हुए चरणाम लिया, तो लेने के बाद तुरंत देते उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनको, तो देखते रह गए पुजारी, रामानुजाचार्य को कुछ नहीं हुआ, तो तुरंत रंगनाथ जी को देख के उन्होंने कहा कि आपका विशेष कृपा है तभी इनके ऊपर इनका कुछ नहीं हुआ करके रंगनाथ जी के सामने उनका चरण पकड़ लेते हैं, तो वो रामानुजाचार्य का शिष्य बनते हैं, दीक्षा भी ग्रहण करते हैं। रामानुजाचार्य के नाम नहीं मान लो, आई डोंट हेर पुजारी श्री रंगन दिस इज द स्टोरी। इसके अद्वेष्ट अति महत्वपूर्ण, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट। जैसे कोई व्यक्ति आपसे या किसी से द्वेष करता है उनको देख के आप कंपैशन, यही बात श्री प्रभुपाल जब गए थे उधर उस समय उनके सारे शिष्य थे, बहुत शिष्य भी बने नहीं थे वो टाइम में, जिसको प्रचार कर रहे थे उधर अमेरिकन युवक और युवती, वो सब क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत पाप कर रहे थे, उनके पास आते भी थे लेकिन फिर भी नशा भी करते थे। तो प्रभुपाद जी उन लोगों को देख के उनको दया की भावना आई, और हमेशा प्रभुपाद जी कहते दे आर इनोसेंट, उन्हें देखा कि वो सब कौन है उनको मालूम नहीं है, मासूम लोग। एक बार प्रभुपाद जी गाड़ी में जा रहे थे तो उनके एक शिष्य, उधर क्लब था, वो बहुत सारे पाप कार्य कर रहे थे, नशा करना सब कुछ कर रहे थे, तो उनके शिष्य ने कहा प्रभुपाद जस्ट सी यू मेटलिस्टिक पीपल दे आर यूजलेस सिंपल पीपल, उनको बहुत निंदा करने लगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको देख के दे आर नॉट सिंपल दे आर इनोसेंट, वो पापी लोग नहीं है, कौन है वो लोग, इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मासूम उर्दू वर्ड है, बोले मासूम,
जानकारी नहीं,
हाँ हाँ दे आर नॉट नोइंग, कुछ कुछ बात नहीं
क्या है क्या पाप जानते नहीं,
ये दी सॉल एज इनोसेंट पीपल से मैत्र करुणा ये बचा, तो अद्वेष्टा के साथ जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूट टेंडेंसी टू एनवी आर हेट्रेड, टू डेवलप हेट्रेड टुवर्ड्स ए पर्सन विथ कंपैशन। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार ममा मतलब मेरा और अहंकार मतलब मैं, अहम कर्ता मैं, अहम ममा, ये दो शब्द है। अहम ममा इति अज्ञान, ये दो अज्ञान के कॉम्पोनेंट्स है, टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ इग्नोरेंस, अहम मैं, ममा मेरा, मैं और मेरा। प्रोपल ये लेक्चर है हिंदी में, मैं और मेरा, वृंदावन में दिए थे लेक्चर, वृंदावन का मी, मी एंड माइन, अहम ममा इति अज्ञान। तो अज्ञान, अज्ञान निर्ममो निरहंकार। जब सर्वभूतानां मैत्री, सारे लोगों के प्रति मैत्री है, तो मेरा करके कुछ है ही नहीं, ये मेरा है वो उसका है कुछ है नहीं, सभी लोग आपका मित्र है। तो कोई मैत्र ये निर्ममा निरहंकार तभी हो सकता है जब सबके प्रति मैत्री की भावना हो। ऐसा नहीं कि मेरा पुत्र है वो उसका पुत्र है, ये मेरी पत्नी है वो आपकी पत्नी है, नहीं मेरा घर है वो आपका घर है, इस प्रकार की कोई भावना ही नहीं रहता उसको। निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख, समान दृष्टिकोण से देखना किसको, दुख और सुख। ये तभी संभव है क्योंकि जब आप देखते हो तो दूसरा व्यक्ति, सुख और दुख दूसरे व्यक्ति की वजह से आता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसकी वजह से आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो है केवल आपके ही कर्मों को आपको प्रदान कर रहा है। इससे प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को कोट करते अपने तात्पर्य में, भागवत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में, तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो मुंजानमेवांत कृतम विपाकम हृद्वाग भूविर्विधाम नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सिद्धायला। सबको याद है श्लोक, हो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक पर साधक है भागवत। कितने लोगों को याद नहीं है श्लोक, याद नहीं है किसके,
नहीं
करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आएगा श्लोक, बहुत बहुत काम में आएगा, हर सेकंड काम में आने वाला श्लोक है। इसका मतलब मालूम है, मीनिंग ऑफ दिस, बताइए ब्रो जी, बताइए जैसे याद उतना बताइए।
जो कष्ट आने पर भी भगवान जो दुबाई समझ विगत करूँ,
आपको पूरा श्लोक याद है, किसको याद है, आपको याद है, आपको याद है, बताइए उसका मीनिंग बताइए। चले ट्राई 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 हो, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो गुंजानमेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वागुपविधामस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदायः। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर यह है, सुसमीक्षमाणो मतलब इंतजार करना, किसका इंतजार करना, भगवान की अनुकंपा कृपा का इंतजार करना। एक, जब आप इंतजार करते हो कोई चीज का तो क्या होता है, कभी दुख आता कभी सुख आता है जीवन में, जीवन में तो ये सब सुख और दुख को क्या समझना चाहिए,
भगवान की कृपा,
क्या समझना चाहिए, मेरे कृतम विपाकम, मैंने बहुत पहले कुछ पाप किए हैं, कर्मों की वजह से मुझे सुख और दुख आ रहा है, मुझे इसकी वजह से सुख नहीं आ रहा है, उसके वजह से दुख नहीं आ रहा है, मेरे कर्मों की वजह से वो दे रहा है बस, इसलिए मेरा मित्र है। अगर आप सोचते हो कि इसके वजह से मुझे दुख आ रहा है इसलिए उससे निकल कहीं और जाना है, ऐसा ही और एक व्यक्ति मिलेगा उधर, आप कहीं और, ऐसे ही और एक व्यक्ति मिलेगा जो उसी प्रकार का दुख देगा। तो व्यक्ति बदली होने से आपके कर्म बदलनी होंगे। मान लिया आप सोचेंगे नहीं ये जगह जो है इससे इधर बहुत सारे दुख है मेरे लिए, तो दूसरे जगह जाएंगे। दूसरा जगह जाने पर जगह बदली करने से आपका कर्म को बदली तो होता नहीं है, कर्म तो वैसे ही आपका ही है। तो व्यक्ति बोले मैं इधर परेशान हूं, उधर जाने के बाद भी कोई और उधर वही परेशान जो उसी तरीके से आता है, बस अंतर हो रही है। जैसे आप इस घर में बैठे हो तो एक पोस्टमैन आके चिट्ठी देते हैं आपको, दूसरे घर में जाने से दूसरे कोई पोस्टमैन आके देगा। तो वैसे ही तथ्य गंभीर गुंजान में बात के तभी दूसरा पॉइंट है, ऐसा सोचना चाहिए। सब सब जो भी है देखिए, दवाई लेना नहीं लेना वो कर्मों के हिसाब से नहीं है, वो आपकी बुद्धि दिया है भगवान ने, उसको लेना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, उसको ठीक इलाज करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि ये दुख जो आ रहा है कहीं और जाने से या कुछ और करने से इसका समाप्त हो जाएगा, नहीं, इनका ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई लेने से आपको मना नहीं कर रहे। लेकिन जो दुख आ रहा है वो किसके लिए, आपको बीमारी किसके लिए आया, हाँ वो सोचना चाहिए। जो भी मुझे मेरे जीवन में दुख आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, मेरे पूर्व कर्मों के हिसाब से आ रहा है, उस व्यक्ति इस व्यक्ति या वो परिस्थिति परिस्थिति वजह से नहीं आ रहा है, ये सोचना, ऐसा सोचना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है।
उसका उदाहरण ये भी दे सकता है कि सपोज करिए कि हमने आज कहीं फीस है, सपोज आज फीस है,
हाँ
हमने ज्यादा खा लिया, तो हम ये सोचे कि उसने हमको खिला दिया इसलिए तो खाया, बल्कि हमने खाया ये मेरा कर्म है, मेरी कर्म की वजह से आया दुखना है, मेरे कर्म की वजह से वो दुखाया।
तो
हमारे बारे में जैसा पूरी कह रहे हैं बीमारी जो आई, बीमारी हमारे अपने कर्मों की वजह से आई।
वो तो है, क्या उदाहरण है आपका, तो लेकिन कर देना एक उदाहरण। हाँ कुंती महारानी जाके दुख मांग रही है, वो कृष्ण के प्रति प्रेम का उत्कर्ष है, वो कृष्ण प्रेम का उत्कर्ष में कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे भगवान आपका दर्शन की लालसा है। वो उस प्रकार का प्रार्थना कोई भक्ति ने नहीं किया है आज तक, कृष्ण दर्शन लालसा, लालसा देव कृष्ण का दर्शन कल से नहीं मिलने वाला है, द्वार जा रहे हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे, कल से कुछ नहीं, आप जब भी दुख थे तब आए दर्शन दिए, अभी दुख नहीं है करके जा रहे ना, अभी आने दो और दुखों पता क्या आप इधर रहेंगे, ये एक बात। तो कृतम विपाकम हित्वा गोपीर्धाम नमस्ते, हृदय कर्मणा मनसा वाचा, भगवान की सेवा में रत रहना, अगर ये तीनों चीजों को अपने जीवन में उतारता है वो व्यक्ति जो है मुक्ति पदेश धाय भाग, उसको मुक्ति उस प्रकार प्राप्त होता है जिस प्रकार एक पुत्र को पिताजी का संपत्ति प्राप्त होता है। कृतम विपाकम होता है ना, बन जाने में जब सुख दुख आता है तो ये समझना चाहिए कि मैंने पहले विपाक किया है ना, वो दुखों की वजह से, वो कर्मों की वजह से आ रहा है, ऐसा सोचना। दूसरा, तीसरा हृद्वा गोपीर विधान नमस्ते, मतलब कर्मणा मनसा वाचा, भगवान की सेवा में रत रहना, ऐसा कोई ये तीन चीजों को अपने जीवन में धारण करके जीता है तो वो व्यक्ति को मुक्ति उस प्रकार प्राप्त होता है दाय भाग, जिस प्रकार लिबरेशन बिकम्स राइटफुल क्लेम, प्रभुपाद लिखते हैं। और भगवत की तरह दूसरे अध्याय के श्लोक है 14वां 15वां श्लोक, मात्रास्पर्शास्त्र कौंतेया शीतोष्ण सुपुत्र आगमापायन इत्यास्तान दीक्षस्व भारत यमहीन विदंत्येते पुरुषम पुरुष सुख समदुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस कनेक्शन में तो कोई, इसलिए हम लोग व्यक्ति को मित्र मानते हैं क्योंकि वो सुख दे रहा है, किसी व्यक्ति को हम लोग दुश्मन मानते हैं क्योंकि मुझे दुख दे रहा है, अस्तित्व में दुख वो नहीं दे रहा है ना सुख वो दे रहा है, मेरे कर्मों को वो प्रदान कर रहा है, इसलिए सभी लोगों को मित्र के रूप में मानना। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। तो वो भले ही दूसरा व्यक्ति गलती कर लेता है उसकी वजह से हमको दुख मिलता है, ये व्यक्ति सोचता है कि उसको क्षमा कर दो, अस्तित्व में उसने क्या किया तो मेरा दुख को मुझे ही दिया है, उसका गलती नहीं है, क्षमा कर देता है।
यहाँ पे एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, हम कई लोग पूछ चुके हैं अभी, हमको सेटिस्फेक्ट्री है, फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने में किसी एक स्टाफ की वजह से या सीनियर मैनेजर की वजह से कोई हमको नुकसान होता है,
हाँ,
तो उसको हम क्या माने, हम उसको क्षमा कर दें या उसको अपने कर्मों का फल माने, क्या माने?
ये तो मानना चाहिए आपके कर्मों का फल है, लेकिन कर्तव्य के रूप में उनको सुधारने का भी आपका जिम्मेदारी है।
वो है कर्मों का फल ही,
हाँ कर्मों का फल ही है। ऐसा व्यापार, ऐसा मैनेजर क्यों मिला आपको? तो उस समय आपको उनको सुधारना चाहिए, सुधारने का कार्य उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसके पास वो अधिकार है। हर व्यक्ति को सुधारने के लिए जाएंगे तो अपराध कर बैठेंगे, जिसके ऊपर आपका अधिकार बनता है उसी को सुधारने के आपके पास ये, ठीक है। सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट जो भी मिलता है उससे वो, मान लो कुछ भी नहीं मिला तो यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वादयितो मत्सरः, इसको बोलते हैं अजगर प्रवृत्ति, अजगर बैठा रहता है, आया तो आया खा ले नहीं तो नहीं। जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी को इस प्रकार की प्रवृत्ति है, उनको उनको कोई जब करते हुए कीर्तन आनंद करते हुए गोवर्धन में आए, आके बैठ गए बस, और उन्हें जाके किसी भिक्षा भी नहीं मांगा, तो ऐसा तो सबके साथ तो हो ही नहीं सकता। ये संतुष्ट इसके ऊपर कहते हैं कि जितना उनको जरूरी है एकदम अधिक प्रयास नहीं करते हुए जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट हो जाना, ज्यादा प्रयास नहीं करते हुए जो जो भी मिलता है उसे संतुष्ट रहना, इसको संतुष्ट कहा जाता है। तब प्रश्न होता है लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा है कि भगवान पर भरोसा नहीं है, उसका जवाब देते हुए सततम योगी, वो प्रयास थोड़ा बहुत करके जो जिससे मिलता है उससे संतुष्ट इसलिए रहता है क्योंकि उनका शरीर का निर्वहन तो करना है, वो किसके लिए करना है उनको, सततम नित्य योग क्रियाओं में, योग क्रियाओं में तो भगवान की सेवा की आदमी भक्ति की क्रियाओं में युक्त रहने के लिए उनका शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर सकता है, वो प्रयास जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट होता है, यानी उसकी प्रयास भी ये मानना चाहिए वो भक्ति करने के लिए ही है, इससे कोई उसमें भक्त लोग और मान लें कोई व्यक्ति प्रयास करता है कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जाता है या कुछ नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, तो उसमें दोष नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि वो इसलिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, सततम योगी बनने के लिए कर रहा है, ठीक है। संतुष्टा सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, क्योंकि वो सततम योगी है इसी के वजह से वो यथात्मा है, यथात्मा मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड। जिस व्यक्ति के अंदर इंद्रियों को नियंत्रण करने की है, वो तपस्या कर रहा है, वो निश्चित रूप में उसका निश्चय जो है बढ़ जाता है, बिकॉज वेरी डिटर्मिंड, तपस्या से डिटर्मिनेशन बढ़ता है। तपस्या मतलब वॉलेंटरी एक्सेप्टिंग बॉडीली एंड फिजिकल डिफिकल्टी, मेंटल डिफिकल्टीज, स्वेच्छा से कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट को स्वीकार करना, उसको क्या बोला जाता है? हाँ, तो वो करने से क्या मिलता है उसको? बिकम्स वेरी डिटरमिंड, वो फल ही फल तुरंत प्राप्त भी ना हो, लगे रहता है। दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त समेप्रिय, मय्यार्पित मनोबुद्धिर्, जब वो जीवन भी बिताता है वो केवल अपना मन और बुद्धि को भी, केवल इंद्रियों को ही नहीं, मुझे अर्पण करते हुए अपना जीवन यापन करता है, ये भक्त के लक्षण है। दृढ़ निश्चय, यहां ये शब्द का प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, he is not swayed by false arguments because no one can need him from the fixed determination of devotional service. usko malum hai main jo bhakti ko swikar kiya hu wo bhakti hi sarvashrestha hai, mujhe apne jeevan ki siddhi ko prapt karne ke liye mujhe idhar udhar any yog vidyani vidhiyon ka palan karne ki zarurat nahi hai. ठीक है, इसमें 13-14 में प्रश्न है, थोड़ा मैं अपनी अनुभव से बताता हूं. ज्वाइन करने से पहले की बात, बिफोर ज्वाइन, ये 12वां अध्याय रोज में उच्चारण करता था, आई यूज टू रिसाइट, ज्वाइन करने का छोड़ दिया. पहले आई वॉज वर्किंग, मैं जहाज में काम करता था उस वक्त, और कुछ बाहर कुछ इनके साथ संबंध, अपना 8 घंटे ड्यूटी करो, 4 घंटा पढ़ाई करो, ऐसे ही ऐसा जीवन था. ऑलमोस्ट दिन को कम से कम 200-300 बार तो ये हो जाता था, जो ड्यूटी के टाइम में भी ये सब उच्चारण करते थे. ये उद्देशा सर्वदा मैं प्रकरण योजना, ऐसा एक अनुभव जरूर हुआ, केवल ये श्लोकों को उच्चारण करने से, जस्ट बाय रिसाइटिंग दिस वर्सेस, ये गुण अपने आप अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर ऐसा शक्ति है. भगवद्गीता के जो श्लोक है वो एक एक श्लोक एक एक व्यक्ति है, आप जितना इन श्लोकों का पारायण में साधना करेंगे, पारायण करते हुए साधना करेंगे, वो निश्चित रूप में इन श्लोकों का जो मूर्तिमान स्वरूप है उनका आशीर्वाद जरूर मिलता. तो ये श्लोकों का पारायण अति आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल यही नहीं कोई भी श्लोक कर लीजिए, बार 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 उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण आनंद से जप करते हैं, लाइक दिस वन से जिस श्लोक का हरे के पास की करते हैं, द्वेशासरूदान प्रकरणे कॉन्शियस भगवान मिस्टेक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साधन, खासकर ब्रह्मचारी स्वाध्याय. स्वाध्याय मतलब क्या है? यही है, शास्त्रों का अध्ययन, बार बार उनका उच्चारण मनन मन करते करते रिसेट करते जाना हो जाता है, वेरी 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 नाइस. जहां जहां गुणों का उल्लेखन होता है शास्त्रों में, भक्तों का गुणों का, उधर तुरंत उधर थोड़ा सा ध्यान देके उनको सुनने में उच्चारण करने में लग लेना चाहिए, यही तो हमारा मापदंड. इट इज अवर, ठीक है. 15. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते ज्ञः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स मे प्रियः. अनुवाद पढ़ी पूरी,
अनुवाद जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विस्तृत नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है.
हाँ, पढ़िए.
श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या संतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वो विचलित नहीं होता। ये भगवत कृपा ही है कि वो किसी बहाव उपद्रव से शुभ नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनात्मक में लीन रहने तथा भक्त में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वो दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वो भयभीत रहता है, और जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा वक्त जो इन समस्त बदलों से परे होता है कृष्ण को अत्यंत दुखी होता है।
यस्मान् जिनसे नौ द्विजते लोको लोकान् नौ जिते हैं, लोग कितना भी परेशान करने पर भी वो परेशान नहीं होता और दूसरों को परेशान नहीं करता है। साधारण भाषा में बताया जाए तो कोई व्यक्ति भक्त आके कहा कि ओ जी मैं बहुत परेशान हूं, इसका मतलब भक्ति नहीं है। क्यों परेशान हो? ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो ये श्लोक पढ़ो, क्या है वो? He by whom no one is put into difficulty, who is not disturbed by anyone. कितना भी प्रयास करे लोग, बहुत सारे होंगे दुष्ट है संसार में, दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग परेशान करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। प्रहलाद महाराज को अपने स्वयं उनके पिताजी ने परेशान किया, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं हुए। हमेशा इस बात को मैं कहता हूं, खास चल जो भक्त लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट में रहते हैं, बहुत मुश्किल है संस्था में, खासकर के मंदिर में अन्य को लोगों से डीलिंग करना, मैनेज करना बहुत परेशानी होती है। बोलेंगे तो करेंगे नहीं, बहुत तकलीफ होता है। तो उन लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दे शुड नेवर बी डिस्टर्ब बाय एनीथिंग। तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, अगर आप परेशान हो गए उससे, हार किसका हुआ, जीत किसका हुआ, दूसरे का हो गया।
इसका
उद्देश्य यही था, अगर परेशान नहीं होंगे वो आपको परेशान करते करते वो खुद परेशान हो जाएगा। फिर भी डेफिनेटली खुद परेशान रहेगा। एक्चुअली जिस व्यक्ति को ये ज्ञान मिल जाता है ना, उसने कभी कभी दुखी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। खास करके जब मुझे बुलाया जाता है मैनेजमेंट कॉलेज में लेक्चर वगैरह देने के लिए, कुछ ऐसी चीजों को डाल देता हूं तो लोग बोलते हैं ये सब कहां से आ रहा है आपको? तो ऐसे भगवद गीता में, तो ये दुनिया में जितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे वो लोग मारने के लिए भी आ रहे, वन शुड नेवर बी डिस्टर्ब। तो ये यस्मान् नो जिते लोको लोकान् नो जिते च हर्षाम हर्ष भयोद्वेग, हर्ष हमर्ष, भय कभी सुख और दुख, भय ये भय उद्वेग ना मुक्त, ये सब चीजों से मुक्त रहता है। एक भी पॉइज इन बोथ हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस, दोनों सुख और दुख में एक समान रहना, भय और चिंता मेरा क्या होगा, भक्त को तो जरा सा भी इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए कि मेरा क्या होगा। एक बार भगवान का शरण लेने के बाद तो कभी चिंता करना कि मेरा क्या होगा, क्यों? इनको मालूम है अवश्य रक्षे कृष्ण, ये ऑलवेज नोस, तो कृष्ण मुझे हमेशा रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। ये विश्वास पालन, ये विश्वास होना अतिवश्यक।
That is one. Like,
क्योंकि ये मिनिमम है, दैट इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच ए डिवोटी हैज। आप देखिए पूरा भगवदगीता में नौ द्विजय प्राप्या च प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्म प्राप्त प्रावृष्य प्रेम प्राप्य नौ द्विजय प्राप्य च प्रियम, और शुरुआत में भी बीच में भी अनेकों जगह प्रैक्टिकली हर अध्याय में इस बात को कहते रहे हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस भी, क्योंकि ये हैप्पीनेस जो आ रहा है इफ somebody इज वेरी हैप्पी somebody इज वेरी मिजरेबल डोंट वरी हैप्पीनेस विल कम, इफ somebody इज वेरी हैप्पी वेट मिजरी विल कम। खाली समय की बात है, बस जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। सो डोंट बी सो मच इन हैप्पीनेस इन दिस, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वे भक्ति से दूर लेके जाता है, उनका ध्यान जो है विषय वस्तुओं के ऊपर लेके जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अभी सुखी हूं, क्यों मेरे पास ये है, और उस सुख में ही बाधा, क्योंकि जैसे सुख आता है वो सुख प्रदान करना वस्तुओं के प्रति ये हमेशा मेरे पास होगा कि नहीं, वो चिंता रहता है। इसलिए भौतिक जगत में जो सुख भी जो है वो सुख सुख नहीं है। अगर गवर्न तवे के ऊपर बिठा के बोले जे आप रसगुल्ला खाओ आइसक्रीम खाओ, हमेशा ये चिंता है ना, मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है लेकिन ये खत्म ना हो जाए, वो चिंता रहता है मुझे कोई और आके छीन ना ले, उसका ये वो चिंता रहता है। इसलिए जो भी भौतिक सुख को अनुभव ये ले रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो सुख को भी अनुभव नहीं कर सकते।
कुछ लोग तो जो उनको भोग मिले भोग कोई नहीं भोग पाते, इस चक्कर में कि ये भोग हमारे पास चला जाए,
ये वहां में से बस चले जाए। बहुत सारे धनी लोग इतना ईर्ष्यालु ये हो जाते हैं, क्या बोलेंगे माइजर
धनी लोग,
क्या हो जाएगा मेरा धन का चिंता। एक बार एक भक्ति एक से एक भक्त ने कहा प्रभु जी एक आपसे एक भक्त मिलना चाहते हो, बहुत दुखी है। तो प्रभु ने कहा कि वो भक्ति नहीं है, जो मिलना ही नहीं मुझे। इफ ही इज अनहैप्पी इज नॉट ए डिवोटी, द सिंपल थिंग। जब हैप्पीनेस आता है सुख आता है तो अस्तित्व में मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, भगवान ने दिया है और उनकी सेवा के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, चाहे भी यूज इट फॉर कृष्ण सर्विस। और जब दुख आता है अस्तित्व में मुझे और दुख आना चाहिए था लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको कम करके दे दिया, कम करके दिया। देखिए ऐसा सोचना नहीं है, सोचना ही नहीं है, ऐसा है। किसी व्यक्ति ने कहा एक ऐसा प्रवचन दिया तो टाइम बाद में कहा ओई ये ऐसा हमको क्या ऐसा सोचना चाहिए क्या सच में ऐसा है सच में ऐसा है इट्स ट्रू। जो ऐसे जो भयानक से जो दुख है पीड़ा है जिसके वजह से हमारी साधना में बाधा आए वैसे दुखों को भगवान जो है सपने में निकाल देते हैं, सूक्ष्म रूप में निकाल देते हैं या वो हमें, लेकिन जो साधारण सा जो पीड़ा है वो जरूर आता है। इसलिए अगर घोर अपराध वगैरह किया हो तो अलग बात है, लेकिन साधारणता ले लेते। नेक्स्ट अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः।
मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है दक्ष है चिंता रहित है समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं कहता, मुझे अच्छी प्रिय है।
हाँ सबसे पहला क्या अनपेक्षा, अनपेक्षा का मतलब क्या है,
इच्छा रहित,
इच्छा रहित किसी से कुछ भी उपेक्षा नहीं करता है, सरल भाषा में कोई आशा नहीं करता है ये मेरे लिए आगे कुछ करेगा ये मेरा कुछ करेगा ये देगा, ऐसा कोई इसका उपेक्षा नहीं करता, इट इज एन डू इट। प्रभुपाद लिखते मनी में बी ऑफर टू ए डिवोटी बट ही शुड नॉट स्ट्रगल टू एक्वायर इट, इफ ऑटोमेटिकली बाय ग्रेस ऑफ सुप्रीम मनी कम्स टू हिम ही इज नॉट एजिटेटेड, नेचुरली डिवोटी टेक्स द मनी टेक्स बात, सॉरी ये तो अलग बात हो गई। सूची क्या ना अपेक्षा मतलब ये है कोई उपेक्षा नहीं रखता है,
अपेक्षा
ये देखिए ये क्या है अनपेक्षा, अपेक्षा मतलब ये है दूसरों से ये करेगा वो देगा ऐसा आशा करना,
ये अपेक्षा।
उपेक्षा मतलब धिक्कार, ये करना अनपेक्षा, ये अपेक्षा। तो ये अनपेक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ये बद्ध अवस्था का हमारा स्वभाव है कि ये आशा करना कि वो मेरे लिए मुझे करेगा, वो कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा। दूसरों से हम बहुत आशा करते हैं, वी एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम अदर्स। बच्चा आशा करता है मेरे पिताजी ऐसा करेंगे मुझे, मुझे ऐसा सोचेगा। पत्नी आशा करती है पति मेरे लिए वो करेगा ये करेगा। तो लेकिन यही आशा ही हमारा दुख का कारण है और उसी के वजह से हम दूसरों से द्वेष भी करने बैठ जाते हैं। नहीं आपसे इतना एक्सपेक्ट किया था, आप किया नहीं, दिया नहीं, ये सब चीजें होता है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, एक्सेप्ट कृष्णा। गुरु कृष्ण के अलावा और किसी के ऊपर आप कुछ भी आशा मत रखो, वो लोग आपके लिए कुछ करेंगे। इवन करना भी चाहते थे वो खुद असहाय हो, क्या करेंगे। इवन इफ दे वॉन्ट टू डू समथिंग, कुछ भी करना चाहते वो खुद तो कंगाल है, खुद तो बंदे हो, करेंगे क्या, वॉट विल दे डू। हाँ, गुरु से निश्चित रूप में आप आशा करना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, मुझे कृपा करेंगे। आध्यात्मिक चीजों का आशा जरूर करना चाहिए और हर अवस्था में आपको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। देयर ओनली टू पीपल हु हेल्प यू। अनपेक्षा सुचि, वो साफ सुथरा रहता है। अंतरंगिक तरीके से, बहिरंगिक तरीके से, दोनों तरीके से वो साफ रहता है सूची। अंतरंगिक तरीके से कैसे, वो हरे कृष्ण जप के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त रहने के प्रयास करता है। बहिरंगिक तरीके से कैसे,
आज का लेक्चर आपका आपने बड़े शहरों वालों को बड़ी दिक्कत कर दी, जहां पे जल की इतनी प्रॉब्लम हो वहां वो लोग क्या करेंगे।
तब तेने कम पास
से
समीक्षा मारो।
अभी आपको लेक्चर पूरा करना है, जो आपने छोड़ दिया
बोल दिया मैंने,
भक्ति वृक्ष वालों को ही उतारते हैं वो, सॉरी भक्ति शास्त्री वालों को तो दिया आपने, वहां पे बता सकते।
वो थोड़ा मार्केटिंग टेक्निक यूज किया मैंने, भक्ति शास्त्री का मार्केटिंग किया। कि अगले साल
फिर भक्ति शास्त्री स्टूडेंट से
उसके जानने
आपने क्या बताया,
आप
लोग
को क्या बताया, आप बताइए।
और मैंने कहा था भक्ति शास्त्री स्टूडेंट को एक कहता हूं, लेकिन बाद में ये भी कहता हूं कि किसी को मत बताना। आंसर तो दे दिया था मैंने,
दे दिया
दे दिया।
आज का मेरे घर वाला क्वेश्चन भी, अच्छा जो आप
बाद में
एक क्वेश्चन का
उठाए
देते
हैं
ना,
उसमें 13 चैप्टर में आएगा ये है ना, इच्छा आदेश समुत्तेना सुखम, इच्छा आदेश सुखम दुखम संघात चेतनादिति एतत् सांख्यम समासेना स्वीकार दुधावृतम, दैट वर्स 7th and 8th 13 चैप्टर का, दोनों साथ में आता है। महाभूतान्यंकार बुद्धिर्विज्ञमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचत्वासिक्षेवं पंचच्चेन्द्रिगोचर इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघात चेतनादिति एतत् सांख्यं समासेन स्वीकारमुदाहृतम्। क्षेत्रम सॉरी क्षेत्रम क्षेत्रम एतत् क्षेत्रम सॉरी क्षेत्रम समासेन, ये सांख्य है पूरा। सांख्य फिलॉसफी को दो श्लोकों में भगवान प्रस्तुत करते हैं, स्पीक्स इन इंस्टीट्यूशन, पढ़ने से नहीं मिलेगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट सुची दक्षा अनपेक्षा सुते दक्षा। दक्षा मतलब क्या है? बहुत कुशल। प्रभुपाद जी कहते थे इस दक्षा के इसमें कि ए डिवोटी शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट वन थिंग। एक भक्त को हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए और एक चीज के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। क्या है वो एक चीज के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए? भक्ति के बारे में, भक्ति का विज्ञान के बारे में उनको सब कुछ मालूम होना चाहिए और बाकी सब जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए ताकि लोग उनको उल्लू ना बनाए। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए ताकि हाँ नहीं वो तो अलग हो गया। और जैक ऑफ ऑल होना अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं बट मास्टर ऑफ वन नन नहीं। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन ये अच्छा है। थोड़ा बहुत सब चीज के बारे में मालूम जानकारी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दक्षा इज वेरी एक्सपर्ट। प्रभुपाद जिस प्रकार सौदा करते थे वैसा कोई नहीं करता था। उनके पास एक पैसा नहीं है दोनों को सामने सामने बिठा के ठीक है इतना पैसा है अपने पास उतना नहीं है कम करो तो कम करा के ठीक है ये पैसा जो ये दे देंगे ले ऐसा उन्होंने सौदा किया था बहुत जगह। इवन कृष्णा बुक का प्रिंटिंग जो है वो डाइनिपॉन वाले प्रिंट किए थे इसको जापान में प्रिंट कराया था पहला कृष्णा बुक को। वो टाइम में पूरा सौदा होने के बाद उधर का कंपनी का जो मालिक है वो कहता है कि इतना सौदा जो है हमने आज तक किसी नहीं किया ऐसा इतना कम रेट में लेके चले गए हम लोग पता नहीं कैसे मान गए। उनको क्या मालूम प्रभुपाद की इंद्रिया इतने संयम में थे। जिस व्यक्ति का इंद्रिया मन संयम में रहता है उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दूसरों को कंट्रोल करे उनके मन को कंट्रोल करें उनको मानना ही पड़ेगा नहीं तो जिस रेट में वो डायरेक्ट पवन वाले ने प्रिंट किया था कृष्णा बुक को वो रेट जो है वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कैसे रेट में हम दे दिए। तो प्रभुपाद जी एक्सपर्ट इन मैं सौदा करने में कुकिंग सिंगिंग जो बोलो वो जो बोलो। केवल भक्तों में भी ये कुछ लोग बोलते हैं ना पढ़ लिख के इस पर में आना चाहिए गलत बात है। आने के बाद ऐसा एक एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसको टेंथ क्लास पास भी नहीं किया वो व्यक्ति विद्वान बन जाता है और जो एकदम पढ़ लिख के आता है कुछ समय का वो छोड़ के भी जा सकता है। ये बड़ा विचित्र है। भक्ति जो है सब सब को उनको प्रदान कर देती है। अनपेक्षा सुधे दक्षा उदासीनो। उदासीन मतलब क्या है? उदासीन ना वो ज्यादा ऐसे प्रभुपाद जी इधर उदासीन फ्री फ्रॉम केयर चिंताओं से मुक्त करना कि मेरा कौन देखभाल करेगा ऐसा कुछ मेरा कुछ है नहीं। उदासीन हो गतव्यतः सारे प्रकार की व्यथाओं से मुक्त रहता है। सर्वारंभ परित्यागी। प्रभुपाद जी से पूछा गया था प्रभुपाद जी आपने लिखा है सर्वारंभ परित्यागी यानी जो व्यक्ति सारे प्रकार की नए कार्यों को शुरुआत नहीं करता है तो आपने संस्था को क्यों शुरू किया? तो प्रभुपाद ने कहा मैंने संस्था को इसलिए शुरू किया ताकि सब लोगों का भौतिक कार्यों को शुरू करने से बंद करना है। टू मेक अदर स्टार्ट ऑल मेटेरियल एंडिवर्स आई स्टार्टेड दिस मूवमेंट। सर्वारंभ परित्यागी यह मत भक्ता ऐसा मेरा भक्त जो है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। फिर वापस उसी चीज को रिपीटेशन है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय यह। वैसे भक्तिमान व्यक्ति जिनके पास ऐसे गुण हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। सम क्षेत्रोच मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु संग समसंग वर्जितः। तुल्यनिन्दासुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ऐसे जो भक्तिमान है, अनिकेतः जिनका कोई फिक्स्ड रेसिडेंस नहीं है, निंदा स्तुति दोनों में एक समान रहना, मौनी मतलब जो हमेशा कृष्ण के बारे में बात करना, संतुष्टो येन केनचित् संतुष्ट संतुष्ट रहना, येन केनचित् जो भी मिलता उसे संतुष्ट रहना, अनिकेतः स्वयं का कोई रेसिडेंस नहीं रहना, स्थिरम अतिर तो मति स्थिर रहना, वैसे भक्तिमान में प्रिय रहा। ये सब अनुवाद पढ़ लीजिए आप तात्पर्य में। ये तो धर्मामृत मितोक्तम परिपासते श्रद्धान मत्पर परमा भक्तास्तीव में प्रिय। ऐसा जो भक्त है मेरे लिए बहुत अतीव प्रिय है, जिनके पास ये तो धर्मामृत मिलम, इनके तात्पर्य पड़ी 20th वर्ड्स 20th।
इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक पर मैयावेश मनो ये माम मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर कुल धर्मावृतम जम नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पद में लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगत से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, इससे वो प्रमाणिक गुरु बनाता है और तब वो उससे श्रद्धा आसक्त तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य को जो निराकार धारणा वर्णित है, परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति संगत करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति संगत प्राप्त न हो। स्वभावश यदि कोई शुद्ध भक्ति के सीधे इस भावना में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार करने की नहीं करने होंगे। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत के पास से सारी वस्तुएं सुखा सुलभ होती हैं। इस प्रकार
ये तो धर्मामृत विदम आखिरी श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या है वो, क्या डिफरेंस है थोड़ा नोटिस कीजिए। अतीव, पहले वाले में अतीव शब्द क्यों इस्तेमाल नहीं किया? कभी कभी ऐसा हो सकता है भक्ति मार्ग के अलावा कोई और मार्ग ज्ञान हो या योग है, ये मार्ग को आचरण करते हुए उनके अंदर मैत्री करुणा कुछ ऐसे गुण आ सकते हैं तो भगवान उन गुणों से जरूर प्रेम करते हैं। लेकिन 20वां श्लोक में कहा गया है ये तू शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं और इन गुणों को अभी प्राप्त नहीं किए, साधना कर रहे हैं, कुछ समय के बाद प्राप्त हो जाएगा उनको, अभी उनको पूर्ण तरीके से गुण आए नहीं है। तो श्री रविशंकर कृपा ठाकुर कहते हैं ऐसे भक्त लोग जो है उन लोगों से जो उनके पास गुण हैं ऑलरेडी, उन लोगों से अति प्रिय है मेरे लिए। क्यों? अन्य मार्ग को पालन करने के द्वारा जो पहले वर्णन किए गुणों में एक दो गुण उनके अंदर आ सकते हैं पूर्ण तरीके से, भले ही मेरे भक्तों में ये गुण नहीं है और उनको प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए साधना कर रहे हैं, ये भक्त लोग मेरे लिए अतीव प्रिय है। किन से? जिनके पास गुण है और
भक्ति में।
इसलिए धर्मामृतम इदम ये शब्द इस्तेमाल किया, ये तू बट जो लोग ये धर्मामृत इदम यथोक्तम परिपासते, जैसे मई आवेश मनो यमाम नित्युक्ता उपासते मय मनाद स्वायं उद्धिन्वेश मयोद्रन संशय अधिकतम समाधात हूं। ये वाले श्लोकों के अनुसार जो मेरे भक्ति करते हैं जो धर्मामृत है उस हिसाब से जो लोग अभ्यास करते हुए अभी उनके पास एक गुण नहीं है तो इसके द्वारा श्री रविशंकर ठाकुर ये चिंता को निकाल देते भक्तों के मन में, अरे इतना सारा गुण मेरे पास तो है नहीं, क्या मैं भगवान के लिए प्रिय नहीं हूं? प्रिय हो, नहीं होने पर भी प्रिय हो। क्यों? ये गुणों को प्राप्त करने की इच्छा है ना, वो इच्छा रखते हुए आप साधना कर रहे हो ना, क्योंकि आप इस प्रकार की साधना भक्ति में लगे हुए हो, आप मेरे लिए अतीव प्रिय हो। अन्य लोग जिनके पास गुण भी हैं पूर्ण रूप में लेकिन फिर उनके पास भक्ति नामक गुण नहीं है। तो सार रूप में ये अध्याय का यही है, ये यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन सर्वे गुणे सत समासते। रूपाई उदाहरण देते, नहा रहा है वो व्यक्ति और नहा के आया बाहर में आया, उन दोनों में अंतर क्या है? समय का अंतर है, क्वेश्चन ऑफ टाइम। नहा रहा है और नहा के दोनों में अंतर है, जैसे क्वेश्चन ऑफ टाइम। इसलिए ये गुणों को देख के अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, खाली इच्छा रखिए मेरे अंदर ये गुण कब प्राप्त होगा। आई टू ऑल हैव ए डिजायर व्हेन विल आई गेट इट। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति गए, प्रभुपाद जी आप लिखते हो कुछ जब नए नाम गलत सुधारे या जब करते तो आंखों में आंसू होना चाहिए, मुझे होता नहीं है, रोना होता नहीं है जब करने के टाइम। प्रभुपाद जी ने कहा एटलीस्ट क्राई दैट यू आर नॉट एबल टू क्राई। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे?
इसलिए रो कि मैं मुझे रोना नहीं आता।
रोना नहीं आ रहा है करके रो, ये भी उसकी बराबरी। तो मेरे पास एक गुण नहीं है लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करने का जो अति प्रयास करता है जो भक्त है, इस धर्मामृत को पालन करता है जिसके द्वारा सारे गुण पूर्ण मात्रा में आ सकती है वो। इसलिए कभी कभी ये सुनने को मिलता है जो मंदिर में नए नए जुड़ते हैं और मंदिर में कुछ ऐसे भक्तों को देख के बोलने लग जाते हैं, अरे इनसे तो भौतिक लोग अच्छा है। मैंने सुनने को मिला कि नहीं? हमको भी बहुत बार सुनने को मिलता है, प्राय हर संडे को सुनने को मिलता है यार भक्त लोग है लेकिन इससे तो भौतिकवादी अच्छा है, ऐसा पर सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उधर जाइए कुछ लोग ऐसे भौतिकवादी होंगे, बहुत नम्रता भी पेश करते हैं, बहुत सभ्यता को पेश करेंगे, सेवा की भावना रखेंगे, खास करके कॉरपोरेट में कई बड़े बड़े पोजिशन में रहते हैं कौन से संस्कृत है, वो भक्ति के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आप देखो कि एक बड़ा 5 स्टार में पार्टी होता है जिसके अंदर वो लोग अपना नॉनवेज परोसते हैं, वो जब परोसते हैं कि कितना बहुत सभ्यता से परोसते हैं। हमारे मंदिरों में कभी कभी प्रसाद परोसा जाता है तो हंगामा करके परोसते हैं। तो कभी कभी लोग सोचते हैं अरे ये वो अच्छा है, वो लोग अच्छे, लेकिन नहीं। क्यों? मनोरथी नास्ति धावतो गति, कि मन के रथ के ओर बैठ के वो इधर उधर भाग रहे हैं। भले उनके अंदर ऐसा गुण दिखाई पड़ रहे, लेकिन जब समय आता है, समय कौन सा है, जब उनको पता लगता है कि ये व्यक्ति के वजह से मेरा इंद्रिय तृप्ति जो है वो उसके अंदर बाधा आ रही है, तो उसका असली स्वरूप मालूम पड़ता है। भौतिकवादियों में कभी कभी ये जो गुण हैं उनमें से कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तभी तक दिखाई पड़ेंगे जब तक उनका इंद्रिय तृप्ति में जब बाधा दिखाई पड़ती वो। भक्तों में ऐसा कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये गुण अभी विकसित नहीं है, लेकिन समय की बात है। जितना सीरियसली, जितना श्रद्धा के साथ वो भजन और साधना में लगा है, उनके अंदर ये गुण एक ना एक दिन आ जाता है। इट विल कम, डेफिनेटली इट विल कम। इसलिए अतीव में प्रिय। तो ये शोके पर आप 10 ऐसा गुण लीजिए, आप 10 एनी ऑफ द 10 क्वालिटीज आप लेके आचार्यों की जीवनी में से या शास्त्रों में से, पुराण भागवत में से, कहीं ना कहीं से एक प्रसंग उल्लेखित करते हुए, मान लीजिए कि मैत्र करुण ही वचन, ठीक है, ये गुण को एक आचार्य ने दिखाया, या प्रहलाद महाराज है, विदुर महाराज है, या कोई भी, यू कैन शुड मेंशन, उसको पूरा हम लिखिए मत, पूरा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स ऐसा ऐसा हुआ करके संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं। लिखिए मत इसको, लिखिए मतलब आप नोट कीजिएगा, नोट करके 10 को, एनी अदर 10, ये आपके लिए होमवर्क टाइप है। 10 एनी अदर 10, 10 गुणों को लीजिए, आपकी मर्जी जो भी है इसके अंदर, उस विवेचना कीजिए। और उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखिए, ये गुण को अपने जीवन में उतारने के लिए आप क्या करने वाले हो, या कर रहे हो, या करने वाले हो। ऐसा नहीं लिखते मैं भक्ति कर रहा हूं, आपने तो कहा भक्ति करने से सब आ जाते, मैं कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं। विद इन दैट भक्ति अंगों में आप क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने वाले हो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेक
जीवन के लिए,
क्या करने वाला, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्या इसका नाम क्या है,
व्यवहारिक कदम,
व्यवहारिक कदम क्या है। आप 10 को अपना नोट्स में लिख लीजिए, लेकिन 2 को आपको प्रेजेंट करना होगा, नहीं 2 प्रेजेंट मतलब बोर्ड में हो, या बोल के, या कैसे भी तरीके से, नाटक के द्वारा हो, स्किट के द्वारा हो, या चार्ट के द्वारा हो, है ना, टीटीसी में सिखाया जाता है ना, डाइडैक्टिक मेथड, इंटरैक्टिव, डाइडैक्टिक, इंटरैक्टिव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, 3 प्रकार का है। टीटीसी कोर्स हो रहा है ना, 26 का शुरू होगा, कौन कौन लोग कर रहे हैं उसको, अकेले कर रहे हैं, भी कर रहे हैं टीटीसी, कर रहे हैं, हंसते क्यों, मेरा परमिशन नहीं है इसलिए। उसमें आपको सिखाया जाएगा फ्लिप चार्ट्स कैसे यूज करना चाहिए, सब चीजें आप यू कैन ले सकते हैं, टीटीसी वन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू दैट टीटीसी वन। हिंदी में भी है, हिंदी में भी है,
26 सिद्धि का कुछ थोड़ा सा डाउट लगा वैसे है, 26 सारी सिद्धि है।
हाँ हाँ हाँ, बहुत महंगा है टूल्स,
1800 रुपीज।
ठीक है, ये होमवर्क ठीक है आपके लिए, ये कर लेंगे 20वां अध्याय का, सॉरी
20वां
अध्याय, सॉरी 12वां अध्याय का,
12वां अध्याय का
10 गुणों के ऊपर आप ये कीजिए, वो आज के लिए है होमवर्क टाइप है। हाँ ये कल अब दिखा के आप कल सुबह जो है ना आप दो दो चीजें के ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। नहीं, आप जो जानते हैं उसी के ऊपर बताइए। ये देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना वो हॉरिजॉन्टली बड़ा नहीं है, इतना 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 मैं जानता हूं इतना जानता हूं उतना नहीं, कितना गहराई से जानते हो वो महत्वपूर्ण है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो आप जानते हो जो आपके अनुभव में है, जैसे मैत्र करोड़ दलात्मा के थोड़ा बहुत जानते हो ब्लेट करो, बहुत सारे चीज सुने हो ना आप, बहुत सारे भक्तों के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, सुखदेव गोस्वामी महाराज और अपने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के श्रीवास ठाकुर उनके बारे में सुने हैं ना आप लोग, ऐसा नहीं एकदम नहीं नहीं एकदम अभी आए अभी भक्त बने, यू हर्ड अबाउट दिस थिंग, खाली रिलेट करना है जस्ट, आपको बुक्स लेके इधर कोई जरूरत नहीं है, शांति से बैठो, अगर नहीं हो पा रहे तो एक माला जप करो अपने आप आए, वेलकम जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जितना आपके इंद्रियों के ऊपर संयम है मन के ऊपर कंट्रोल है शांति है तो परमात्मा समाहितः, ट्राई टू डिपेंड ऑन परमात्मा ऑलवेज, अपनी बुद्धि अपनी काबिलता अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर ज्यादा निर्भर मत कीजिएगा, डिपेंड ऑन कृष्णा, ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा, हर अवस्था में कृष्ण के ऊपर निर्भर करना अति आवश्यक है। अब ये भी करना है मैं क्या करूंगा ऐसे ऐसे पूरी चिंता लेके अपनी बुद्धि को ज्यादा परेशान मत कीजिए, उसको शांति से भगवान से प्रार्थना कीजिए, दैट इज कॉल्ड ए डिवोटी, ही सरेंडर्स टू कृष्ण इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर अवस्था में कृष्ण का शरणागत होना एक भक्त का लक्षण होता है। ये भक्ति शास्त्री जो है एक हमारा बुद्धि का कार्य नहीं है, इट इज नॉट द वर्क ऑफ योर इंटेलिजेंस, ये जो है साधना काम है, डू इट इन ए वेरी सरेंडर्ड वे। उपनिषदों में कहा गया है कि नायम आत्म प्रवचने लभ्यो न मे दशा न बहुनाशुते न ये मे वैश्य उन्नते तेन लभ्यस, न मे दशा न बहुनाशुते न, बहुत सारे श्रुतियों को मंत्रों को याद किया फिर भी ना प्राप्त नहीं होते भगवान, ना मे दशा मैं बहुत बुद्धिमान हूं इसके बारे प्राप्त नहीं होते, ये मे वैश्य उन्नते, जिनको जो भगवान जिनको सुनते हैं उन्हीं को भगवान प्रदान करते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत काम है कल तक, आपका दोपहर का 3 बजे का फीस्ट हजम हो जाएगा, विल गेट डिजेस्टेड बाय दिस टाइम, यू आर केयर पेन्स, ठीक है 10 क्वालिटीज। हरे कृष्णा,
अभी नेक्स्ट क्लास ऑफ
नहीं, आपके लिए बहुत काम है ना सुबह, हाँ कल
उसका
भी
दुआ बताइए, जो आज आपने लेक्चर
मार दिया
था उसका
देखिए उसके लिए थोड़ा
रोज उसमें एक चीज एक प्रश्न तो ये आ रहा है, जैसे जनरली कहते हैं कि शरीर है कि 5 तत्व
बना हुआ,
आपने सुबह बताया तीन का ये शरीर है, प्राण प्राण वो तो है ही वाला,
ये जो स्थूल शरीर है उसके अंदर भी एक सूक्ष्म भाग है एक स्थूल भाग है,
इस स्थूल शरीर के अंदर भी दो भाग
है। हाँ
भागवत चतुर्थी आपने चित्त यूज किया, चित्त में क्या
आता है, चित्त मतलब प्रोबलित कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, दूषित चेतना प्रदूषित चेतना क्या है, सत्व रजस्तम के द्वारा चेतना का मिश्रण होता है, वो जो उसका संग्रह अवस्था को चित्त बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड चित्त।
अच्छा
आत्मा पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है, वो कैसे चलेगा?
क्या हो रहा है?
जैसे उन्होंने प्रश्न किया,
आप इधर से इधर तक चले हो, ठीक है, मान लीजिए कितना 20 फुट है, आत्मा भी 20 फुट चला क्या? क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक होने के नाते वो आध्यात्मिक आकाश में ही रहता है, केवल उनका चेतना जो है वो बद्ध हो जाता है। चेतना बद्ध हो जाता है, इट इज अ कॉन्शियसनेस विच गेट्स बाउंड।
तो आत्मा बद्ध नहीं होता है?
आत्मा की बात करो, आपका मन कहां है बताओ, कहां बताओ? फिर जब मन के बारे में हम नहीं जान सकते वो कहां है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वो कि माप नहीं सकते, वो आत्मा के बारे में क्या क्या विचार करोगे? बुद्धि दो थोड़ा सा, एक किलो बुद्धि दो। तो हमारा बुद्धि क्या है, ये भौतिक पढ़ाई हमने किया ना स्कूल कॉलेज में, आजकल के स्कूल और कॉलेज में पढ़ा ना, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे बुद्धि को इतना स्थूल बना के रख दी है, सूक्ष्म चीजों को स्थूल दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, समझ ना? ये इसलिए हमको मुश्किल लगता है ये सब समझना, क्योंकि हमने जो पढ़ाई किया ना उसी के वजह से, जितना व्यक्ति स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करता है उतना उसका भ्रष्ट होता है बुद्धि। अगर इस देश को कोई हित करना चाहता है तो सारे स्कूल और कॉलेज उनको बॉम्ब डाल के नाश कर दो। प्रभुपाद जी जब बोलते हैं ये स्कूल और कॉलेज कत्ल खाने हैं, ही मीन्स इट, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया, उनको मालूम है सच में कत्ल करना है, सबका बुद्धि को कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि सबको ऐसे सिखाया जाता है बस ये स्थूल भौतिक चीजों के अलावा और कुछ है ही नहीं, वो सूक्ष्म विचार तो उसके अंदर जाता ही नहीं है। अगर वो पढ़ने के लिए भी जाता है वो सूक्ष्म चीजों के स्थूल दृष्टिकोण से पढ़ना चाहता है, ही हैज गॉट ए ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सटल थिंग्स। ऐसे अभी भी पहले इवन ग्रैंडफादर के फादर वो टाइम में देखा, जब वो लोग पानी मंगाते थे, मैं पानी जाके देखता था बच्चे के रूप में, जस्ट वो रख के वो वरुण देव को प्रणाम करके वो स्वीकार करते थे, यानी वो ये जल को नहीं देखते थे, पानी को दिखाई नहीं पड़ता था उनको, उसके पीछे जो अधिष्ठान देव है उसको देखते थे। तो अगर मान लो कुछ अग्नि अग्नि देव बोलते थे, अग्नि नहीं बोलते थे केवल, आग जलाओ, तो उसके पीछे जो अधिदेव है उनको ही संबोधित करते थे। कुछ की कुछ भी गड़बड़ होता था तो आजकल घरों में झगड़ा होता है ना, उसने किया ऐसा किया नहीं, लोग बोलते थे मेरा कर्म है करके शांति से बैठ जाते थे। ऐसा स्वाभाविक शिक्षा है, लेकिन आधुनिक दुनिया है भी पढ़ाई लिखाई करके सब लोग भ्रष्ट कर देते हैं।
तो आत्मा जो है, आत्मा
को
देखते हैं कि आत्मा
बद्ध
होता है,
इट इज ओनली द चेतना कंडीशन कॉन्शियस,
आत्मा भौतिक आवरण से बंध नहीं सकते
है, नहीं नहीं इम्पॉसिबल, ये चेतना बंद बद्ध होता है। कपिल मुनि और देवी के संवाद में वो आप पढ़ लो जितना हुआ है, और 13 अध्याय में जब आएगा थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके ऊपर, डिस्कस करेंगे, ठीक है? नथिंग एल्स, आपके लिए थोड़ा आज ज्यादा होमवर्क है, कर लीजिए। कल कौन कौन बताएंगे, दो दो चीज के बारे में आप बताएंगे, और आप बताएंगे, आए बताएंगे, हम बताएंगे, और ब्रह्मचारी लोग कौन कौन, दो दोष दो चीज के बारे में प्रेजेंटेशन, तो जी आप बताएंगे कुछ, आपको 5 या 10 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। या तो आप ग्रुप बना सकते हो, 2-3 लोगों में ग्रुप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम
नहीं।
आप ब्रह्मचारी हो प्रभु जी, आपको डरना नहीं चाहिए।
प्रभु जी ये शास्त्र रूप जो है ना, इनको ये बताइए कुछ ना कुछ प्ले करके बताइए। अभी इन्होंने एक प्ले करा तो पीछे बड़ा अच्छा किया।
आप डिस्कस करो, यू हैव अ डिस्कशन,
उसको प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा
प्रेजेंट करो।
बटवाली प्रभु
ये सब सब भी करो, आप सब लोग डिसाइड करके आप कैसे करेंगे। आप एक ग्रुप बना से कुछ करिए, टुमारो सुबह का जो है ना टाइम एक घंटे में हो जाएगा ना, एक घंटे में 12 अध्याय समाप्त हो जाएगा। देन यू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया फॉर दिस। हरे
कृष्ण।
अभी क्लास खत्म हो गई, अभी लिखना शुरू कर दीजिए आप। हाँ देंगे क्वेश्चन आंसर दूंगा, कल देंगे।